तब आस्था सब बच्चों की ओर देखकर बोली, आप सबने अपने गिफ्ट बोले थे ना, देखो हम सब के लिए गिफ्ट लाए हैं, ये देखो। अब आगे, अब जल्दी ही उन्होंने वो गिफ्ट बच्चों में बांट दिए थे और बच्चे खुशी से उछलने लगे थे। आस्था उनका साथ दे रही थी, हालांकि वो अपना ध्यान रख रही थी क्योंकि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। वो अब आस्था के दोस्तों से मिलकर अरमान का चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से से जुड़ा था। वो एकदम नॉर्मल हो गया था। वो भी आगे बढ़कर बच्चों से मिलने लगा था और सबके साथ हंसी खुशी आस्था के जैसे ही बातें करने लगा था। और सब लोग भी कुछ पल के लिए बच्चे बन गए थे। आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी लोग बच्चों से आगे बढ़कर मिल रहे थे। तभी एक बड़ा ही खूबसूरत सा बच्चा रौनक के पास आया और उसे इशारों से नीचे झुकने के लिए कहने लगा। अब रौनक हैरानी से उस बच्चे को देख रही थी, लेकिन जब उस बच्चे ने उसे वापस झुकने के लिए कहा और जैसे ही रौनक झुकी तो उस बच्चे ने अचानक रौनक के गालों पर किस कर दिया था। आहान ये देखकर चिढ़ गया और झल्लाते हुए बोला, ए बच्चे, ये सब क्या चल रहा है, ये क्या किया तुमने? यहाँ इतनी बड़ी लड़की को कोई किस करता है? ये तुम्हारी दीदी है, क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह किस करने की? तब वो बच्चा शरारती अंदाज में बोला, अरे भैया आप इतनी ज्यादा क्यों जल रहे हैं? आप क्या दीदी के बॉयफ्रेंड हैं? नहीं ना, और देखो ना कितनी खूबसूरत है, ये मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है और मैंने किस करके उन्हें इस बात का एहसास करा दिया है कि मैं इनका बॉयफ्रेंड बनूंगा। अब जैसे ही उस बच्चे ने ये कहा, आहान के गले से खांसी आना शुरू हो गई थी। वहीं ध्रुव, आकाश, सुमित सब उस बच्चे की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे थे, वो इधर उधर देखने लगे थे। वहीं रौनक के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चा बोल रहा था वो बड़ा ही प्यारा और मासूम क्यूट सा लग रहा था। तब रौनक ने आगे झुककर उस बच्चे का कान पकड़ लिया था और मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने से हो तुम और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ। तब वो बच्चा मासूमियत से बोला, हाँ हाँ दीदी, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनूंगा, आप देखना जब मैं इन भैया के जितना ताकतवर बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं आपसे शादी करूंगा। तब रौनक को उस बच्चे ने जैसे ही ऐसा कहा, रौनक खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वहीं रौनक को इस तरह हंसता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर एक सुकून सा उमड़ आया था। वहीं रश्मि नम आंखों से आस्था की ओर देखने लगी थी कि कहीं ना कहीं आस्था की वजह से रौनक की हंसी वापस लौट रही थी। रश्मि ने भी रौनक को गले से लगा लिया था और आस्था ने भी रौनक को गले से लगाया था। कुछ देर सबके सब लोग उन बच्चों के साथ पार्टी करने के बाद, ढेर सारे गिफ्ट देने के बाद वापस घर की ओर जाने लगे। क्योंकि आस्था ने कोई नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो बच्चों से मिलने की खुशी में वो ऐसे ही बाहर चली गई थी, तो इसीलिए उसे जोरों से भूख लगी थी। उसने अरमान से धीमी आवाज़ में बोला कि उसे भूख लगी है तो इसीलिए वो घर वापस जाना चाहती है। तो अरमान उसे लेकर जल्दी ही घर वापस आया था और बाकी सबने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया था, इसीलिए सबने आस्था और अरमान से कहा था कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से यहाँ आ जाएं। तब तक वो थोड़ी देर और यहाँ समय बिताना चाहेंगे। उसके बाद जल्दी ही आस्था और अरमान घर आ गए थे। वहाँ जाकर आस्था ने जल्दी जल्दी नाश्ता करना शुरू कर दिया था। अरमान को आस्था का साथ बेहद भा रहा था। अरमान सिंघानिया किसी तरह की कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा था, उसके सर पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं था। आस्था के साथ वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यहाँ 15 दिन गुजारना चाहता था और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता था। वहीं दादाजी भी और अरमान के चेहरे की खुशी देखकर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे, क्योंकि जब से राजवीर जिंदल अरमान की ज़िंदगी में वापस आया था तो ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा डरा गई थी। और अब गांव जाने का डिसीशन उन्होंने इसीलिए लिया था ताकि अरमान को राजवीर की बहुत से दूर जाए, और फाइनली उसमें वो कामयाब हो गए थे। अब नाश्ता करने के बाद आस्था ने अरमान से बोला, चलिए ना, सबके सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर जल्दी ही आस्था और अरमान सब लोगों के पास जाने लगे। वहीं ध्रुव और आहान, आकाश, रश्मि, सुमित, राधिका सबको देख रहे थे, क्योंकि राधिका काफ़ी शांत सी थी। उसने भी ज़्यादा अपनी इच्छा नहीं दिखाई थी क्योंकि उसके ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ हो चुका था। हालांकि गांव आकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन सुमित के सामने वो सही से अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। यहाँ सुमित की नज़रें बार बार राधिका पर जाकर ठहर रही थी। वहीं ध्रुव और आहान बारी बारी से कभी रश्मि और साथ ही साथ आकाश को देख रहे थे और सुमित और राधिका को देख रहे थे। और ध्रुव आहान से बोला, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ और नहीं रुकना चाहिए और हम लोगों को गाँव घूमने जाना चाहिए। वैसे भी लव बर्ड्स के बीच में हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं पता था कि सुमित भी राधिका को पसंद करता था, लेकिन अपने ईगो के चलते वो उसे प्रपोज नहीं करेगा। वेल, तब आहान और ध्रुव जैसे ही वहां से जाने लगे, आहान रुका और उसने एक नज़र रौनक की ओर देखा और ध्रुव की ओर देखकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, यार रौनक को भी बोलना हमारे साथ चलने के लिए। तब ध्रुव शरारती अंदाज में बोला, सोच ले फिर तुम मुझे कहेगा कि वो मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कह रही थी। देख तू कह रहा है तो मैं इसलिए टोक देता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि रौनक हमारे साथ चले। तब आहान ने घूर कर ध्रुव को बिठा और आंखें छोटी करते हुए बोला, तो ये फालतू की बातें छोड़ और उसे भी साथ लेकर चल, क्योंकि मैं उसके साथ गांव घूमना चाहता हूँ। तब ध्रुव आहान की बात मानकर रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया था। मुस्कुराते हुए बोला, रौनक हमें लगता है कि जब तक आस्था और भाभी और अरमान भाई ना आए तो चलो तब तक हम गांव का एक राउंड लगा कर आते हैं, चलो ना तुम भी हमारे साथ। तब रौनक ने रश्मि की ओर देखा और राधिका की तरफ देखा, दोनों ही उस वक्त अपने अपने पार्टनर के साथ थी। हालांकि राधिका सुमित को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी, वो सिर्फ दूसरे बच्चों से खेलने में लगी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सुमित पर ही था। तब रौनक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, ठीक है ध्रुव जी, लेकिन आप इस छछुंदर को बोल दीजिए कि ये मेरे आसपास नहीं रहना चाहिए। तब ध्रुव मुस्कुराया, ठीक है तुम इस छछुंदर के साथ ना सही, लेकिन मेरे साथ तो चल सकती हो ना। अब जैसे ध्रुव ने ये कहा, आहान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को कंट्रोल किया, क्योंकि उस वक्त रौनक का साथ चलना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो जल्दी ही रौनक को साथ लेकर वो लोग गांव के अंदर सैर करने के लिए जाने लगे। वहीं जैसे ही ध्रुव आहान रौनक गांव की गलियों में से होकर जाने लगे, उन्हें नहीं पता था कि कौन सी गली में किधर जाना है। वो तो बस उल्टा सीधा जो भी उन्हें गली दिखाई दे रही थी उसमें ही टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने लगे। और गांव में छोटे छोटे बड़े ही प्यारे प्यारे कच्चे कच्चे घर बने हुए थे। एक आध घर पक्का सीमेंट से बना हुआ था, उसे जो थोड़े बहुत अमीर लोग से। हालांकि अब बेसिकली जो गांव होते हैं वहां पर अच्छे घर होते हैं, लेकिन आस्था का गांव काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव था, तो वहां पर अभी भी काफी ज्यादा कच्चे घर थे, कुछ लोगों के पक्के और मजबूत बने हुए थे। जैसे ही वो सब एक गली से छोटे से घर के सामने से होते हुए जाने लगे, अचानक से किसी ने एक बाल्टी भरकर पानी ध्रुव के ऊपर फेंक दिया था। अब तो आहान ध्रुव हैरान हो गए कि अचानक से ये बिन मौसम बरसात कहां से हो गई। तभी ध्रुव ने घूर कर उस घर की ओर देखा। उसने देखा कि एक घाघरा चोली पहने हुए, एक ग्रीन रंग का घाघरा चोली पहने हुए बड़े ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की वहां खड़ी हुई थी और उसके हाथों में इस वक्त बाल्टी थी।
असल में वो घर साफ करने के बाद गंदा पानी बाहर फेंक रही थी, लेकिन वो सारा गंदा पानी ध्रुव के ऊपर फेंका जा चुका था। अब तो ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन जैसे ही उसने उस लड़की की शक्ल की ओर देखा तब ध्रुव का गुस्सा एक मिनट में ही छूमंतर हो गया था। ये वही लड़की थी जो उसे ढाबे पर मिली थी, यानी कि वंशिका थी। फ्लैशबैक। वंशिका रात के समय जैसे छोटी सी झोपड़ी में सोई हुई थी। उसका मालिक सुबह के 4 बजे तड़के तड़के अपने खेतों को चेक करने के लिए आया था, ट्यूबवेल बंद करने के लिए आया था। लेकिन जैसे उसने वहां वंशिका को देखा वो हैरान हो गया और उसने वंशिका को उठाकर उससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तब वंशिका बात बनाते हुए बोली कि काका मुझे गांव का एक प्रोजेक्ट मिला है, मैं इस गांव के लोगों पर कुछ रिसर्च करने के लिए आई हूँ। मैं शहर से आई हूँ लेकिन काफ़ी रात हो गई थी मुझे यहाँ आने में, तो रात को कोई ठिकाना नहीं था रुकने का, इसीलिए मैं यहाँ रुक गई थी। तब वो बूढ़ा काका वंशिका से बोला कि वो उसके साथ घर चले, वो उसके घर गांव की मेहमान है तो वो उसके घर पर रह सकती है। क्योंकि वंशिका ने उन्हें कहा कि अगर उसकी रिसर्च सब लोगों की नज़रों में आ जाती है तो इस गांव का कुछ भला हो सकता है और पिछड़े गांव की जगह एक विकसित गांव बन सकता है, तो ये बात काका को समझ में आ गई थी, इसीलिए वो वंशिका को घर ले आए थे। और घर जाकर क्योंकि वंशिका के पास एक ही जोड़ी कपड़े थे तो उन्होंने वहां जाकर गांव की बेटी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके जो कपड़े थे वो उसे वंशिका को दे दिए थे। तो वंशिका अब गांव की एक लड़की बनकर उस काकी का सुबह सुबह काम में मदद करवा रही थी। और बस जब वो साफ सफाई करने के बाद गंदा पानी बाहर फेंकने लगी, वो सारा पानी ध्रुव के ऊपर गिर चुका था। अब वंशिका को देखकर आहान बोला, हेलो मैडम ये क्या किया आपने, अपना सारा का सारा गंदा धूल का पानी मेरे दोस्त के ऊपर गिरा दिया। और वंशिका चिढ़ते हुए आहान से बोली, तो मैंने कहा था आपके दोस्त को इस तरह से मेरे रास्ते में आने के लिए, क्या जरूरत थी इस तरह से यहाँ आने के लिए। वहीं रौनक मुस्कुराने लगी क्योंकि वंशिका का एटीट्यूड, उसकी खूबसूरती और सब काफी ज्यादा कमाल की थी। रौनक उससे काफी इम्प्रेस हो रही थी। लेकिन ध्रुव के तो दिल में गिटार बजने लगे थे। एक बार फिर से उसे ऐसे लगने लगा था कि कितने सारे लोग उसके पास आकर गिटार बजा रहे हों और बैकग्राउंड में गाना बज रहा हो। यहाँ गाने के बोल दिए गए हैं।